وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ. اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو ان کی ہوش مندی بخشی. کس سے پہلے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. اور ہم اس کو خوب جانتے ہیں. یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا. یعنی ابراہیم ٹین ایج میں اپنی خاندان کی رسموں اور شرکیہ چیزوں پہ تنقید کرتے ہوئے دکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک سلیم الطبع شخص ایسی کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتا کہ جس میں سے شرک کی بو آتی ہو اور اللہ کی ناراضگی ہو. قوم کا جواب وہی ہے جو آج بھی ہوتا ہے، باپ دادا کرتے تھے، کیا کریں، ان کی رسمیں، ان کے طور طریقے ہیں. انہوں نے کہا، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا، کیا تمہارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ آج بھی آپ کسی کی رسم پہ بات کریں نا کہ نہیں یہ پیلا جوڑا کچھ نہیں ہوتا، یہ مائیاں کچھ نہیں ہیں، اور برات کی تو ضرورت نہیں، اور سمپل اسلام تو ایسی شادی جاتا ہے. تو لوگ کہیں، آر یو سیریس، برات کے بغیر بھی شادی ہوتی ہے؟ جیسے اگر میں آپ کو بھی کہہ دوں کہ پوری اسلامی ہسٹری میں، یہ اسلامی تاریخ میں، یہ اسلامک شریعہ میں لفظ برات ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو آج ہماری شادیاں ہوتی ہیں لفظ برات کے بغیر؟ کیا اس کا کانسیپٹ ہے؟ پہلے دوسرے گاؤں سے لڑکیاں لینے جاتے تھے اور رات کو لیٹ آنا ہوتا تھا اور اس کا سامان اٹھا کے لانا ہوتا تھا، جہیز کی صورت میں جو ڈکیتی کی واردات کر کے لاتے تھے تو جوان کڑے مردوں کو لے جاتے تھے کہ واپسی پہ سامان اٹھا کے لائیں گے، اس کو برات کہتے تھے لوگ. اور یہ انڈیا سے بات شروع ہوئی اور پیچھے سے چلتی گئی کہ لڑکی کا سامان اٹھانے، دہیج، دہیج کہتے ہیں غالباً اس کو اٹھانے کے لیے، لانے اور سیکیورٹی کے لیے لے جاتے تھے کہ راستے میں کوئی چوری چکا نہ ہو جائے، سونا چاندی. یہاں سے برات کا تصور شروع ہوا. آج آپ دیکھیے وہ گھوڑے اور ٹانگے اور قسمیں بدل گیا، اور برات والے ہم برات سے، یہ ان کی کرسیاں، یہ ہماری کرسیاں. کتنی گھر صرف اس وجہ سے ٹوٹتے ہیں کہ برات والوں کو صحیح پروٹوکول نہیں دیا. بھائی ہمیں کچھ دے نہ دیں، ہمارے مہمانوں کو کھانا بڑا اچھا کھلا دیجیے گا، یہ کہاں سے آئی؟ اب اگر میں آپ سے یہ باتیں کروں تو ہو سکتا ہے آپ کے اندر کسی میں آ رہا ہو کہ آر یو سیریس. جب پہلی دفعہ میں نے بھی یہ بات سنی ہوگی، مجھے بھی حیرت ہوئی. ہم تو برات کے ساتھ جانے کو اپنے لیے بڑی شان سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم وقت کے رواج پر بات کرو گے، لوگ ایسے ہی کہیں گے، کیا بات ہے، مذاق تو نہیں کر رہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے اور ان کو پیدا کرنے والا ہے. اور اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم، میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. ابراہیم کیوں نہیں ڈرے؟ حق تھا ان کے پاس، سچ تھا. چنانچہ انہوں نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف اس کے ایک بڑے کو چھوڑ دیا کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں. انہوں نے آ کر اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی ظالم تھا وہ. بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا جس کا نام ابراہیم ہے. انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی ایسی خبر لی جاتی ہے. ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں. ان کے شعور کو بیدار کیا کہ اگر یہ بڑا بت ان کو نہیں بچا سکا تو بتاؤ تمہیں کہاں یہ بچائے گا. یہ بات سن کر یہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے، واقعی تم خود ہی ظالم ہو. مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے، تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں. شرمندہ ہو گئے. ابراہیم نے کہا، اچھا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے اور نہ نقصان پر؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کو اور اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. ہم نے کہا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. دیکھیے قوم کی کہانی ابراہیم کے ساتھ. ہدایت کی چنگاری اٹھی تھی قوم ابراہیم کے دل میں. شرمندہ ہو گئے تھے کہ پتھر کے بت خود کو تو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکے، ہمیں کہاں بچائیں گے. لیکن ہدایت کے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. موسیٰ کے جادوگروں کے دل میں ہدایت کی جوت جاگی، فوراً کا آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لیا ہے. انہوں نے اس موقع کو اویل کیا. اپرچونیٹیز ڈزنٹ ناک ٹوائس، موقع جو ہوتے ہیں نا بار بار نہیں آتے. ہدایت ایک غیور مہمان ہے، بہت زیادہ اس کے اندر ایگو ہے. ایک دفعہ آپ کے دروازے پہ ڈھک ڈھک کرے گا، اگر آپ دل کا دروازہ نہیں کھولیں گے وہ آپ کو ناراض کر کے، یا آپ اس سے ناراض ہیں وہ چلا جائے گا. جو لوگ مواقع کا فائدہ نہیں اٹھاتے نا، ان کو پھر مواقع ملتے بھی نہیں ہیں. ایک ہدایت کے موقع سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہے نا دورہ قرآن میں، अगर आपने दिल खोल दिया तो अगला मौका आपकी जिंदगी में जरूर आएगा इंशाल्लाह। आपको पता भी नहीं होगा, आप चाहेंगे भी नहीं, आप कभी कोई प्लान भी नहीं, लेकिन आप कुरान के लिए आगे जुड़ाएंगे अगर आपको कोई मौका मिलेगा। क्यों? कि एक दफा हिदायत की कॉल अटेंड कर ले तो ये बार बार आती है, और जो इस कॉल को आप अटेंड ना करें फिर थोड़े दिन के बाद चली जाती है। और याद रखिए कि गाइडेंस डिलेड, गाइडेंस डिनाइड, जितना डिले करेंगे उधर जाएगी। और यही बात है, फिर दूसरी बात है कि इब्राहिम इतना कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत थी। मोहब्बत फातह आलम, और मोहब्बत कुर्बानियां देना सिखाती है। हिदायत पर आना एक सोचा समझा मंसूबा है, बाय चांस नहीं, आप में से कोई यहां बाय चांस नहीं आया, अल्लाह ने आपको एक प्लान के साथ भेजा है। अल्लाह अपनी किताब के लिए हर रोज नहीं भेजता, वंस अ वाइल कोई आ जाता है किसी के कहने पे। ठहरता वो है जिसको वाकई अल्लाह ने चूज करना है। फिर आप देखिए कि इब्राहिम को जलाने के लिए आग जलाई, और इब्राहिम को जलाना चाहते थे, अल्लाह ने कहा या ना रुकूनी बर्दम व सलाम अला इब्राहिम। पहले देखिए इब्राहिम कूद कैसे पड़े, अकल ने कितनी तावीलें सिखाई होंगी। देखो तुम अकेले हो, देखो अगर तुम भी मर गए तो फिर क्या होगा, फिर दीन कौन फैलाएगा। लेकिन बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में, अकल है महफे तमाशा लबे बाम अभी, कुछ इसी तरह से अकल का फैसला नहीं था ये। लिख लें, अकल बड़ी होशियार है। जब आप अकल से पूछेंगे ना कि ये काम करूं कि ना करूं, कभी भी नहीं करेंगे। वो अकल से पूछने वाले हैं जो नहीं कर रहे। कैसे जाऊं, देर होगी, लेट हो जाएंगे, ये होगा, वो होगा, कुर्बानी, जॉब, बच्चे, घर खाली, बूढ़ी हूं, थक जाऊंगी, रात जागी रही, सोई रही। अकल से आप पूछेंगे तो आप कल नहीं इधर आएंगे। क्या मिल रहा है आपको इधर आके, घर बैठ के सुन ले। और घर आके कभी आप घर बैठ के ऐसे सुन जाए तो बड़ी मुबारक की बात। सुनते हैं माशाल्लाह, आज भी कई लोग हैं आपके साथ सुन रहे हैं, इस वक्त भी मजबूरियों में सुन रहे हैं, उनको मौका मिले वो जरूर आके बैठ जाएंगे। और अगर मौका हो बड़ी चीज को डी लेंगे तो फिर ये मजबूरी नहीं है। नतीजा क्या हुआ, आप अपने दिल से आके बैठते हैं, आपका दिल रोज आपको उठाता है। आप क्यों सो के उठ जाते हैं, हम भी सो रहे होते घर में, जोर तो मैं कोई रोक भी नहीं सकता था सोने पे, सो जाते। लेकिन आपके मेरे दिल ने मुझे जगा दिया, हमें तो नींद ही नहीं आती। इधर मैं आई सुबह तो मैसेज एक लिखा हुआ था शुरू में कि आई एम वेटिंग फ्रॉम फजर, फजर टाइम से बैठी हुई हूँ इस क्लास के इंतजार में। पता नहीं वो किस टाइम जोन से सिस्टर, लेकिन मैंने देखा इस चीज को। पिछले साल जो दारे कुरान होता था तो अतीक हुआ इस बात की कि आप लोगों की फजर का टाइम होता था। हम यूके में जब करते थे वहां की जो सुबह, आपकी अभी फजर हो रही होती है, तो तब भी सैकड़ों लोग रूम में होते थे। मैंने देखा कि फर्क कोई नहीं पड़ा था इतना, बल्कि लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स दिए कि अब तो और अच्छी रूटीन बन गई है कि पारा सुन सुना के फिर 8-9 बजे सोते हैं, फजर के बाद बैठते हैं और पूरा सुनते हैं, इतनी फोकस्ड। और बच्चे भी सोए थे, बच्चों वाली माओ को बहुत अच्छा लगा। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी उस वक्त में मेरा ख्याल है कि रिप्ले हो रहा है, तो रिप्ले इस टाइम तो हर एक है। लेकिन याद रखिए कि जब तक हमारा दिल नहीं गवाही देगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। जो हो जौके यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। अकल से पूछ पूछ के तो आज तक जिए, आज दिल से पूछ के देखिए। अगर दिल आपका मेरा चल पड़ा फिर वो कहते हैं दिल पे तो इख्तियार नहीं है। कोई आपसे पूछे क्या करना है, घर से सुन लो, नहीं दिल पे मेरा इख्तियार नहीं है, मुझे जाना है, मेरा रास्ते का वक्त भी इबादत है, और मैं अल्लाह के लिए निकलूंगी नहीं तो क्या घर बैठ के सारे काम हो जाएंगे। तो इब्राहिम कूद पड़े। अब हुआ क्या, उन्होंने सोचा कुछ और, अल्लाह ने क्या किया, वारादु बिही कैदन फजअलना हुमुल अखसरीन। वो चाहते थे कि इब्राहिम के साथ बुराई करें, मगर हमने इनको बुरी तरह नाकाम कर दिया, और हम इसे और लूत को बचाकर इस सरजमीन की तरफ निकाल ले गए जिसमें हमने दुनियावार के लिए बरकतें रखी हैं। सोचिए इब्राहिम आग में क्यों नहीं जले, क्योंकि वो अल्लाह की मोहब्बत की आग में जल रहे थे। बड़ी आग हो तो छोटी आग कुछ नहीं कहती। इसी तरह याद रखिए, जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत की आग लग जाती ना, उनको इस रास्ते की छोटी छोटी तकलीफें नहीं रोकती। एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं, फिर भी जाना है। गाड़ी का खर्चा बहुत बढ़ गया, फिर भी जाना है। दूर बहुत है, फिर भी जाना है। रश है तो बहुत जाना है। 4th of July है तो भी जाना है। बच्चे घर है तो भी जाना, जाना जाना जाना। बारिश है तो भी जाना, क्योंकि अंदर एक आग लगी हुई है। दीन के रास्ते की मुश्किलात सिर्फ ठंडे लोगों को आती हैं। लिख लें, जो कुरान सुनते वक्त ठंडे होते हैं ना, वो इब्राहिम की तरह इस गर्म आग के लिए तैयार नहीं है। और आप देखिए कि आग जलाएगी, अल्लाह ने उस आग से सल्व कर ली। अल्लाह की चीज है, अल्लाह जब चाहे उसको तेज करे, आगे ज्यादा कर दे। आप अपने ऊपर देखिए कैसे, बस आप देखिए कि चूल्हा आपका है ना, आप कम जलाएं, आहिस्ता तेज करें, टेम्परेचर बढ़ा लें, अवन कम करें, आपका है ना, तो आग किसकी। अल्लाह की, जिस रब ने छोटा सा ओवन आपके मेरे हाथ में दे दिया, पूरी दुनिया की आग उसकी है, पूरी दुनिया की आग ठंडी हो गई, रिवायत में आता है उस वक्त। लेकिन अगर इतनी ठंडी होती कि इसमें इब्राहिम फ्रीज होते तो कहानी कुल नया नारुकुनी बर्फ व सलामन, सलामन के रूम टेम्परेचर पे रहना, ये ना कि इतनी ठंडी हो जाए, यानी आग अल्लाह का हुक्म सुनने के लिए इतना तैयार है कि वो पूरी ठंडी हो जाए, तो कहा नहीं, रूम टेम्परेचर पे रखना मेरे इब्राहिम को, अब गर्मी की वजह सर्दी ना लग जाए। ये से होता है अल्लाह से जज्बाती ताल्लुक, अल्लाह से ठंडा ठंडा गैर जज्बाती ताल्लुक होगा, ना ऐसी कुर्बानियां दी जाती हैं और ना अल्लाह की ऐसी मदद आती है। अल्लाह को गर्म लोग चाहिए, और हकीकत है कि अम्बिया कराम सब्र के मीनार थे। एक एक की आजमाइश, अब इब्राहिम की आजमाइश आग में डाल के की जा रही है, अगले अंबिया के हम और पढ़ेंगे, अपने आप से पूछिए। और जज्बात जो होते हैं ना, ये कुर्बानी देना सिखाते हैं। इमोशंस बेस हैं दुनिया में बच्चे के आने की, जज्बात ना हो तो कभी कोई बच्चा ना पैदा हो। जब इमोशंस के साथ इस जिंदगी का ताल्लुक है ना, इसी तरह दिल की जिंदगी भी जज्बात से है। तो अगर आप कुरान सुन रहे हो और आपके अंदर कोई हलचल नहीं है, वो मद्दो जजर नहीं है, वो जो पीछे पढ़ चुके हैं हम सूरत में कि कैसे झाग उठती और पीतल तांबे को पिघलाएं तो उसके ऊपर भी झाग आती, अगर मेरे आपके अंदर कुरान आप सुनते का कोई प्लान्स नहीं है, कोई इरादे नहीं है, कोई हलचल नहीं, क्या करूं, क्या कर दूं, कैसे करूं, अब जिंदगी कैसे गुजारूं, बच्चों को कैसे लूं, मियां को कैसे सेट करूं, तो फिर समझिए कि अभी वो मदद नहीं आएगी अल्लाह की। और मैंने वो लोग देखे हैं छह छह बच्चों के साथ दो दो प्रेम्स को हांकते हुए वो कुरान सुनने आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ले लेते मदद। और जैसे दिल ठंडा होता है सब कुर्बानियां देनी मुश्किल होती, क्यों? जज्बे जिंदा होते हैं। जब तक मेरे अंदर जोश है ना, मैं यहां रोज आऊंगी, रोजा है कि नहीं, आई डोंट माइंड, मुझे जाना है, नींद पूरी हुई नहीं, मुझे जागना है। लेकिन एक लम्हे के लिए मैं सोचूं, क्या फर्क पड़ता है। देखिए मैं आपको अभी भी, अगर आपको आजमाना है तो मैं आजमा सकती हूँ, कल यहाँ बैठ के आपको पिछले साल के दौरा कुरान का पारा सुनाओ, यकीन करें आप इंजॉय करेंगे। आई एम श्योर कि आपको इतना ही फायदा होगा, इतना ही मजा आएगा, शर्त यह कि हमने माहौल कैसा बनाया हुआ है। लेकिन मेरा अजर किधर गया, मेरा हिस्सा किधर गया? अल्लाह मैं जीते जी क्यों छोड़ दूँ, जब मैं कर सकती हूँ तो मैं क्यों ना करूँ? ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम क्या करें, ये कब होता है? जब अल्लाह हमसे कराता है, मेरा हिस्सा चला जाएगा। मुझे याद है एक जगह अपने साथियों की ड्यूटीज चेंज की, तो एक ड्यूटी किसी और की थी, तो उनको कहा कि आप अब किसी और जगह चले जाएं तो छोड़ दें, तो बहुत रोई कि आज कल तक मेरा इसमें हिस्सा था, क्या बल्ला मेरा हिस्सा निकाल रहा? बल्ला ही अगर कोई दुनियादार होता तो वो पर खुश होता कि चलो काफी साल अब मैंने ये ड्यूटी दी, अब कोई और दे मुझे करना। अल्लाह के रास्तों में घुसड़ना पड़ता है, भागो भागो, अल्लाह मुझे कई जगह, अल्लाह प्लीज खुद जगह बनाएंगे तो बनेगी। रात को कई लोग ऐसे आए, बाद में बातें हो रही थी उनसे, किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप क्या तरीका है कि आप यहाँ रुक जाएं? मैंने कहा देखे मेरी जिंदगी का असूल है, मैंने कभी अल्लाह के किसी रास्ते में ना नहीं की, शर्त है कि मेरी पहले से कमिटमेंट ना हो किसी से, या मैं उस वक्त अवेलेबल हूँ, आप मुझे रात भी कहेंगे तो मैं दर्स के लिए आऊंगी, मैंने ना नहीं की, लेकिन मुझे इधर मैं नहीं बुलाऊंगी, आपका जोश और आप अल्लाह से कहें मुझे क्यों कहते हैं, आपकी तड़प आपको रोकेगी, आप चाहते हैं आपको और कुरान सीखना है, तड़पे रोए अल्लाह से मांगे, अल्लाह को शो करें, कमिटमेंट दिखाएं, अल्लाह से वादे करें। आपको पता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो आखिरी 2 साल जो थे उसमें मदीना से लोग आने शुरू हो गए थे, पहले साल सिर्फ 6 लोग आए, बात हुई इस्लाम अच्छा लगा, एक घाटी में बैठ के अंदर मुसलमान हो गए, आपने कहा जाओ चले जाओ वहां के अपने हिसाब से काम करो, वो चले गए। एक साल में उन 5-6 लोगों से जो बीच ही डले थे, अगले साल आए तो 72 लोग आए जो अंदर बैठे, और उनकी अब एक ही ख्वाहिश थी कि अल्लाह के नबी मदीना में लोग घर घर में आपका रास्ता देख रहे हैं। मुसअब बिन उमैर को अल्लाह ने साद बिन ज़ुरारा और साद बिन मास की ऐसी मायदीन 3-4 लोगों ने वहां काम शुरू कर दिया, काम कर दिया। और जब अल्लाह के नबी को बुला रहे थे, आपने कहा मैं भी नहीं जाऊंगा, फिर आए, फिर एक दिन जब उन्होंने कहा कि देखो ये छोटा फैसला नहीं है तुम मुझे बुला रहे हो, हजरत अब्बास जो आपके चचा थे अभी मुस्लिम नहीं थे, वो उस मीटिंग में मौजूद थे, खड़े हो गए, कहा देखो ये अलग बात है कि हम इस शख्स के दीन को भी नहीं मान रहे, लेकिन ये हमारा बच्चा है, कल अगर इसको वहां जाके छोड़ना है अभी छोड़ दो, इसको जाके कत्ल करना है अभी छोड़ दो, और अगर इसको कह तो रहे हो कि चलो हम तुम्हारा साथ देंगे और साथ नहीं देना, इधर छोड़ दो, हमने इसको नहीं छोड़ा हुआ। ऐसी जज्बे वाली तकरीर की, और वही देखिए जो मदीना के चंद लोग थे जब वो अल्लाह के नबी गए तो उन्होंने फिर कितनी मुश्किलें सही, अगर उन्होंने पहले से ये फर्मनेस ना दिखाई होती तो क्या मदीना में जो चैलेंजेस सहाबा को पेश है अंसार उसको भुगत सकते थे? मुहाजरीन तो कर ही लेते, वो तो आए थे घर छोड़ के, और ये किबले की तब्दीली से लेकर अगले कितने वक्त जो आप पीछे पड़े ये अंसार का इम्तिहान था। तो याद रखिए इस सारी बात को अपने लिए सदका जारिया बना लीजिए कि इब्राहिम के लिए आग ठंडी हो गई थी, आज भी आग चल रही है, आज इस दुनिया में सिर्फ एक इब्राहिम को नहीं, इब्राहिम की नस्लों को जलाने के लिए कुफर की, इल्हाद की, बेदीनी की और एथिज्म की आगें जल रही हैं। आज अगर मैं और आप ठंडे ठंडे इस दुनिया से गुजर गए तो हमारा हिस्सा नहीं लगा। कहते हैं कि जब इब्राहिम की आग जल रही थी तो एक बुलबुल या छोटा सा कोई भी परिंदा था, उसने एक कतरा अपनी जूंच में डाला तो लाके उस आग पे लालने लगी, तो दूसरे परिंदों ने उसको कहा तुझे क्या हो गया, इतने से कतरे से आग बुझेगी? तो कहेगी मुझे क्या, कल क्यामत के दिन ये कह दूंगी कि अल्लाह मेरी चोंच बड़ी छोटी थी, मेरी चोंच में इतने ही पाने हैं। और वल्लाही मैं खुद को भी छोटी सी एक चिड़िया की तरह ही सोचती हूँ, और मैं अक्सर अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह मुझे पता है हमारी इन कोशिशों से कोई इतना बड़ा फर्क कोई नहीं आना, कितने ज्यादा लोगों को फायदा नहीं हो रहा, लेकिन हम सुरखरू हैं, कल कह सकेंगे कि अल्लाह हस्बे कुदरत हस्बे तौफीक हमने इस दुनिया में कुफर शिर्क बेदीनी बेहयाई की आग बुझाने की कोशिश की थी, हो गया तो बहुत खुश है और नहीं तो फिर हम तो दुनिया से चले जाएंगे। आज उम्मते मुस्लिमा अगर इस आग को बुझाने की जो ग्लोब पे लगी हुई है कोशिश नहीं करेगी वो मुजरिम है। आज आप मैं इस जोश के साथ उठेंगे, वो जोश इस किताब से मिलता है, ये बातों से नहीं मिलता, ये गुनारों से नहीं मिलता, ये कौमी तराने पढ़ने से नहीं होता, ये मिल्ली नगमे पढ़ने से नहीं आता, ये झंडे हाथों में लगाने से नहीं आता, ये जोश आता है जब हम इन नबियों की कहानियां पढ़ते हैं। आप अपने ऊपर ले, मैं फिर इस पे आगे जा ही नहीं पा रही, आप इमेजिन तो करें आग इतनी बड़ी, और ये छोटी सी आग नहीं थी कि चलो जाके उंगली डाल दो, फायर वर्क नहीं था, ये इतनी गहरी खाइयां खोदी थी उन लोगों ने, फिर उसको ईंधन से भरते रहे कई साल, सिर्फ उसमें ईंधन भरते रहे। औरतें जो थी जाहिल उस दौर की, वो मन्नत मानती थी कि हमारा ये काम हो गया ना तो हम इब्राहिम की आग में ईंधन डालेंगी, इतने वो दुश्मन थे इब्राहिम के। और जब आग भड़कनी थी अब सवाल पैदा होता था कि आग जलाए कौन, जो करीब जाएगा आग जब उसमें जलेगा, कर करा के उसका इंतजाम किया। अब मसला ये था कि इब्राहिम को फेंके कैसे, जो इब्राहिम को धक्का देने करीब जाएगा वो आग में जलेगा। फिर उस वक्त फर्स्ट टाइम उन्होंने वो मंजबीक इजाद की जिसको आज के दौर में आप तोप कह लीजिए, गुलेल कह लीजिए, एक उस ऐसी जगह थी उस पर बिठा के इब्राहिम को दूर से फेंका था, इतनी तेज आग थी, महल बनवाया था लोगों ने करीब, फिर जो भी उस दौर का था कि मैं देखूं इब्राहिम कैसे जलता है। आगे सुनेंगे हम सूरह कसस में, लोग शहर के जमा हो गए थे कि आज इब्राहिम को जलने का मंजर देखे। लोग आज भी तो मुसलमानों को जलाना चाहते हैं, अब जला रहे हैं, फिजिकली जला रहे हैं, आप क्या बातें करते हैं, ये कोई ढकी छुपी बातें तो नहीं है। कभी आपको लाशें और वो बच्चों के जले हुए काले चेहरे नहीं दिखे जो मुसलमानों के जल रहे हैं, और बच्चों की गर्दन पे पांव रख के न्यू बॉर्न बेबीज को किल करते लोग नहीं दिखे? नजर कमजोर है मुसलमान की तो और बात है, आज वही जुल्म और बर्बरियत कई गुना बढ़ चुका है जो उसमें था, लेकिन इब्राहिम कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं हुए। हम सिर्फ आंखें बंद करके हम कहते हैं सो शुक्र है मुझे तो नहीं लगी ना आंख, शुक्र है मेरा बच्चा तो सिक्योर है। क्या दिल में गुजरी होगी इब्राहिम के, मुझे मूसा याद आ रहे हैं सांप को पकड़ते हुए, चाहे वो असा से सांप बना था, क्या हाथ गुजरी होगी। आपको कोई नकली सांप भी कहे ना पकड़ो तो मैं तो कभी ना पकड़ू, मूसा को तो कहा पकड़ो इसको, अलकेहा फखुजा अलकेहा फखुजा, पिछले पारे में आपने पढ़ा है। ये इम्तिहान देने पड़ेंगे, अल्लाह के हुक्म पे चीजें छोड़नी पड़ेंगी, अल्लाह के हुक्म पे लेनी पड़ेंगी, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इस पे यकीन रखिए वारादु बिही कैदन, उन्होंने उसके साथ इरादा बुराई का किया था, लेकिन फजअलनाहुमुल अखसरीन, अल्लाह ने उनको बुरी तरह नाकाम किया। आज भी अल्लाह करता है सब, सिर्फ उस वक्त करेगा जब हम और आप इसके लिए रिजर्व करेंगे और अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे दे। क्या हुआ, इब्राहिम आग से बच गए, और रिवायात पढ़ के तो देखिए इब्राहिम कहते हैं मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन वो है जो मैंने आग में गुजारे। कई दिन रखा, सुकून मिला, आसमान से अल्लाह की तरफ से सलाम आते थे, फरिश्ते आके हाल पूछते थे, दुआ कीजिए कि हमें ये जौके खुदाई मिल जाए। अल्लाह के रास्ते की थकत में ज्यादा मजा है क्योंकि इसमें अल्लाह की तरफ से तसल्ली है, तनज्जल अलैहिमुल मलाइका, और अल्लाह ताला हमें ये तड़प। फिर इसके बाद क्या, वह नजईना, इस लफ्ज नजईना को 3 दफा बड़ा बड़ा करके अपने नोट्स पे लिख लें। तो आज ये जो मिथ बन चुका है ना कि मुसलमान खत्म हो जाएंगे, मुसलमानों का कुछ नहीं बनना, तो अल्लाह कह रहे जाने नजईना हो था तो फिर आज नजईना कुम क्यों नहीं हो सकता। जो इब्राहिम को अल्लाह बचा सकता है कि आज उम्मत मुस्लिमा को नहीं बचाएगा, बचाएगा बिल्कुल, बचाता है अल्लाह आज भी। फरमाया मगर हमने इसको बुरी तरह नाकाम कर दिया, यानी उनको तो निजात दे दी, और हमने इसे और लूत को बचाकर इस बस्ती की तरफ निकाल लिया जिसमें हमने दुनिया वालों के लिए बरकतें रखी हैं, और हमने उसे इसहाक और याकूब और इस पर मजीद के हर एक को साले बनाया। नोट कीजिएगा, ये अल्लाह की तरफ से तोहफे मिलते हैं। हर कुर्बानी के बाद गिफ्ट मिलता है, जैसे आपको हर इम्तिहान के बाद रिपोर्ट कार्ड के साथ गिफ्ट्स मिलते हैं ना अगर आप पास हो जाए। जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उतना बड़ा टाइटल। इब्राहिम आग में गए, इम्तिहान था, कामयाब हुए, जब वहां से निकले अल्लाह ने बुढ़ापे में बेटे और पोते की खुशखबरी दी। मैं कहती हूँ आज आप बूढ़े हो जाएं, आप 60-70 के हो जाएं, आपके शौहर भी इससे बड़े हो जाएं, आपको अल्लाह फिर भी औलाद दे सकता है अगर आपके मेरे अंदर हजरत इब्राहिम का सही मान हो। बे औलाद शख्स को अल्लाह ने औलाद वाला कर दिया, कब? जब वो आग में अल्लाह के हुक्म से कूद गए। हम रोते ही रहते हैं, डॉक्टरों के पीछे जा रहे हैं, दुखी हैं, सैड है, डिप्रेस है, बच्चे नहीं, बच्चे नहीं, बच्चे नहीं। भाई नहीं है तो ना सही, तुम कुछ और कर लो। जरूर तुमने बच्चों की गंदगी साफ करनी है, तुम सोसाइटी की गंदगी साफ करो। सेल्फ सेंटर्ड लोग जो होते हैं ना, वो कभी भी खुश नहीं रह सकते, और वो दूसरों के काम के भी नहीं होते। कभी इनको माइग्रेन होगा, कभी सर में दर्द होगी, कभी पाँव में दर्द है, आज ये चेकअप है, कल वो चेकअप है, आज दांतों का है, कल बाजुओं का है, कल कोहनियों का, परसों नाखूनों का, परसों उसके बाद कुछ है। खुद को सजाते हैं, इतना रेनोवेट अगर आज हमने इस्लाम को किया होता जितना आज खुद को करते हैं, और जितनी अपॉइंटमेंट्स हमारी अपनी जाती हैं इतनी अगर इस्लाम की मीटिंग होती कि क्या किया जाए, तो आज इस्लाम सेहतमंद होता। आज उम्मत मुस्लिमा वाकई वो सांस ले रही होती जिसकी जरूरत है लेने की, तो अल्लाह ताला कुर्बानियों को जाया नहीं करता। अल्लाह बेटे भी देते, फिर पोते भी, फिर साले भी बना दिया, और हमने इनको इमाम बना दिया जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे। दुआ करें अल्लाह हमें वो औलादे दे दुनिया में इमाम बने। वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, आगे पढ़ेंगे हम सूरह फुरकान की एक आयत में, कि अल्लाह वो औलाद दे जो दुनिया की लीडर बने और जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे। इसको नोट कीजिए, वो लीडर नहीं थे कि जो अपनी मनमानियां करते हैं, वो दुनिया अल्लाह के निजाम को लगाते थे, और हमने इन्हें वही के जरिए नेक कामों की और नमाज कायम करने की और जकात देने की हिदायत की। वकानु लना आबिदीन, और वो हमारी इबादत गुजार थे। अल्लाह हमें भी इबादत गुजार बना, अब्दियत का जज्बा दे दे कि हम तेरे बंदे बन जाएं। और उसके बाद फिर वलू तन्ना तैनाहु हुक्मं व इल्मा, और लूत को हमने हुक्म और इल्म बख्शा, और उसे उस बस्ती से बचाकर निकाल दिया जो बदकारियां करती थी। अल्लाह हमें भी ऐसी बस्तियों से निकाल जहाँ शैतान हमारे लिए ये काम करता हो। दर हकीकत वो बड़ी ही फासिक कौम थी। लूत अलैहिस्सलाम को हमने अपनी रहमत में दाखिल किया, वो सालेह में से था। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह जैसे लूत को उस गंदे काम करने वालों से बचा लिया, आज उम्मत मुस्लिम को बचा ले, हमारी नस्लों को, हमारी औलादों को होमोसेक्सुअलिटी की गंदगी से बचा ले। और किस तरह से अल्लाह तू हम कर, ये तेरा काम है, हमसे बस तू तड़प के दुआ करवा ले, और इस दुआ को तू कबूलियत दे दे। और उसके बाद एक और खूबसूरत किरदार, और यही नेमत हमने नूह को दी। याद करो जबकि इन सबसे पहले इसने हमें पुकारा था, किन से पहले? ये सारे अंबिया कराम जिनकी बातें हम अभी पढ़ते सुनते आ रहे हैं, और हमने इसकी दुआ कबूल की और उसे और उसके घर वालों को कर्बे अजीम से निजात दी। आप कह लीजिए कि हजरत नूह का गम क्या था? वो कर्ब ये था कि चारों तरफ शिर्क आम है, चारों तरफ गुनाह आम है, चारों तरफ बुराइयां आम है, और एक सफाई पसंद इंसान गंदे माहौल में नहीं सकता। ये तो आप भी गवाही देंगे। आपको किसी ऐसी जगह पर रहना तो पड़े जहां चीजें बिखरी, गंदगी, खराबी, बैड स्मेल, आपका सांस घुटने लगेगा। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपने इर्द गिर्द खराबियां देखी तो उनको मुश्किल लगा। और याद रखिए, गुनाहों की चमक दमक कर्बे अजीम बन जाती है जब ईमान जिंदा होता है। ईमान आपको मुझे इस गंदगी की पहचान देगा। पर हम कहते हैं इट्स ओके, इट्स देयर कल्चर, इट्स फाइन, इट्स वेस्ट दिस दिस दिस। नहीं, उनको वो कर्ब लगता था कि लोगों को क्या हो गया, और उस कौम के मुकाबले में उसकी मदद की जिसने मरी आयात को झुटला दिया था, वो बड़े बुरे लोग थे, बस हमने इन सब को गर्क कर दिया। अब कैसे लगेगा एल्बम का सफा पलटा जा रहा है, जैसे मेमोरियल बुक होती है ना, मेमोरीज हैं, ये आपके इस बच्चे की, ये उसकी, ये उसकी। अल्लाह ने पहले इब्राहिम का पेज पलटा, फिर लूत का, और अब नूह का पलट के कहा कि थे वो सब खराब लोग, पर मैंने लूत को बचा लिया और नूह को भी बचा लिया, आज भी बचा अल्लाह। देखिए, मुझे और आपको अपने आप को स्ट्रांग करने की जरूरत है। ये हमने खुद डिली डली किया हुआ है, इसलिए अल्लाह की मदद नहीं आ रही, या हार या पार। अब तक अल्लाह के नबी के दौर में 1 महीने से ज्यादा कोई मामला नहीं लटकता था। दैट्स इट, या मुसलमान जीत गए या काफिर जीत गए। ये सदियों पे जो मोहित है ना हमारा, है वो मैच ड्रॉ हो रहा है, कभी इधर सी सॉ चल रहा है, कभी इधर कभी उधर, वो उसकी वजह हम ढीले ढाले मुसलमान है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें सच्चा मुसलमान बना दे। अब एक और शख्स का जिक्र जो अल्लाह के नबी थे, बाप बेटे, व दाऊद व सुलेमान, और इसी नेमत से हमने दाऊद और सुलेमान को सरफराज किया। याद करो वो मौका जबकि दोनों एक खेत के मुकदमे में फैसला कर रहे थे, जिसमें रात के वक्त दूसरे लोगों की बकरियां फैल गई थी और हम उनकी अदालत खुद देख रहे थे। उस वक्त हमने सही फैसला सुलेमान को सुझा दिया, हालांकि हुक्म और इल्म हमने दोनों को अता किया था। सुलेमान और दाऊद बाप और बेटा, मैं जब इन दोनों का जिक्र इकट्ठा पढ़ती हूँ मेरे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह आज उम्मत मुस्लिमा में भी यही मिसालें हों। बाप भी दीन की तरफ भाग रहे हैं और बेटा भी उसमें काम कर रहा है। बाप बेटा दोनों भाग भाग के अल्लाह के रास्तों में चलते आ रहे हैं, तो ये खूबसूरत तरीका होता है। यहाँ असल में ये सिखाया कि नेमते अल्लाह देकर भी आजमाता है तो लेके भी आजमाता है। ना नेमतों का मिलना इनाम है क्योंकि वो भी आयश है, और ना नेमत का छिनना अल्लाह की तरफ से है। तो ये बादशाह भी थे, नबी थे। हजरत दाऊद से पीछे आपको मैंने सुनाया था सूरह बनी इसराइल के शुरू में कि इनका अरूज शुरू हुआ था। ये वो दौर था कि गुर्बत खत्म होके अब शाही खानदान में नबूवत चली गई थी। अल्लाह ने इनको बहुत कुछ दिया, लेकिन बेटे को बाप से ज्यादा फहम दिया। और फहमे सुलेमानी तो आप जानते ही हैं। इमाम इब्ने तैमिया दुआ किया करते थे कि या मुफहिम सुलेमान फहमनी, ए सुलेमान को फहम देने वाले मुझे भी फहम दे। तो क्या पता चला कि बाज़ुकात आपके बच्चे आपसे ज्यादा जीनियस हो जाते हैं क्योंकि उनके उससे एक्सपोजर बहुत है, वो जिस माहौल में पढ़ रहे हैं हमने उस तरह नहीं पढ़ा। हमारे अंदर रिवायात बहुत अच्छी होंगी, एथिक्स बहुत अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सब्र बर्दाश्त बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेंटली बच्चे बहुत स्ट्रांग होंगे। कंप्यूटर उनको चलाना आता है, वो 2 जमा 2 पे चलते हैं, आपको कोई भी कुछ कह दे और वो मान जाएंगे, लेकिन बच्चे नहीं मानते, वो दलील मांगते हैं। तो बेटे की काबिलियत को बाप ने अपने लिए दूसरी तरफ नहीं कहा, उसको ये नहीं कहा बैठो चुप करो तुम कल के बच्चे हो। कभी बच्चों को लेट डाउन ना करें, ये जो शर्मिंदा कभी ना करें तू बाप है या मैं बाप हूं, तू माँ है कि मैं माँ हूं, नहीं। आप उनकी समझिए, उनका टैलेंट उभारी है, लेकिन बोल्डनेस के नाम पे बदतमीज नहीं करना। एथिक्स अखलाकियत अपनी जगह, लेकिन अल्लाह ने बेटे को ज्यादा समझ दे दी। और याद रखिए कि ये फहम बड़ी चीज है क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे दिया हमने सबको था हुक्म और इल्म। अब यहाँ हुक्म और इल्म को देख लीजिए तो कहते हैं कि एक शेर अकल को इस्तेमाल करने के लिए एक टन हिकमत चाहिए होती है, और इसी तरह एक शेर इल्म को एब्जॉर्ब करने के लिए एक टन हिकमत चाहिए होती है। ये हिकमत मांगी है, और हिकमत क्या है? सही मौके पर सही बात करना, वक्त और वक्त की नौइयत समझना, इस वक्त क्या करना चाहिए। हर एक को इसकी समझ नहीं होती, बाद लोग बिल्कुल अगेंस्ट सोच रहे होते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों चल रहा है, ये क्या हो रहा है, इसको इतना हम लंबा क्यों पढ़ रहे हैं, इसको छोटा क्यों पढ़ रहे हैं, ये जल्दी क्यों, ये देर क्यों, लेकिन इसके पीछे हिकमत है। कुछ चीजें कुरान में एक ही बार आनी है, फिर कर दो जो अभी वक्त 5 मिनट ऊपर होंगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स फाइन, इतना ह्यूमन एरर चलता है, लेकिन बात कर लो, और जो बात चलनी है उसको छोड़ो, आगे जाके फिर दोहराई जाएगी। तो हम सब अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें हिकमत दे दे। फरमाया वसख्खरना मा दाऊद अलजिबाल, दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ हमने पहाड़ों और परिंदों को मुसख्खर कर दिया था जो तस्बीह करते थे। क्या मंजर होता होगा, अब यहाँ के पहाड़ और दरख्तों को सोचिए और सब हिल रहे हैं और कह रहे हैं सुभान रब्बी अल अजीम, कैसा लगता होगा। लेकिन वो करते थे अल्लाह की तस्बीहात, ये सच है। मत सोचिए कि अब लोगों ने मौजों का इनकार किया, कहते ये कैसे हो सकता, नहीं नहीं वो पत्थर की सरसराहट थी, वो पानी के गिरने की आवाज थी। भाई आपको क्या मसला है, क्या पहाड़ नहीं बोल सकते, बताइए इस वक्त क्या बोल रहा है मेरा ये जुबान का एक टुकड़ा, कौन बुला रहा है, चलिए आप बुला के दिखाइए उनकी जो नहीं अल्लाह की तरफ से बोल पाते। गोश्त का टुकड़ा, ये टेप रिकॉर्डर में एक पतली सी रील चलती थी, और सीडी प्लेयर में तो वो भी नहीं है, मैं उसको घंटों देखती थी, इसमें चलता क्या, तेरे अंदर है क्या। और बचपन में टीवी को देखती थी, हाई इस छोटे से डब्बे में कैसे इतने बड़े बड़े आदमी गए हैं, सोचते थे, मैं खुद सोचती थी, मुझे याद है। तो जिस रब ने गोश्त के लोथड़े को सिखा दिया बोलना, कल हाथ बोलेंगे, जुबान बोलेगी, रान बोलेगी, क्या दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में पहाड़ नहीं बोलते होंगे। तो कभी अल्लाह की कुदरत का इनकार ना करें, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। फरमाइस फेल के करने वाले हम ही थे, हमने इसको तुम्हारे फायदे के लिए जरा बनाने की सनत सिखा दी थी ताकि तुमको एक दूसरे की मार से बचाए, क्या फिर तुम शुक्रगुजार हो। और हमने सुलेमान के लिए तेज हवाओं को मुसख्खर कर दिया जो इसके हुक्म से सर जमीन की तरफ चलती थी, जिसमें हमने बरकतें रखी, हम हर चीज का इल्म रखने वाले थे, और शयातीन में से हमने बहुत सो को इसका ताबे कर दिया जो इसके लिए गौते लगाते और इसके सिवा दूसरे काम करते थे, हाँ लेकिन इन सब कामों के निगरान हम ही थे। बहुत ही खूबसूरत किरदार है बाप बेटे का, इसमें हमारे लिए चंद लेसन हैं एज ए उम्मत वसत, और वो क्या है, तकवा और वसाइल जब एक जगह जमा होते हैं तो इंसानियत को खैर मिलती है। हजरत दाऊद को अल्लाह ताला ने लोहे को पिघलाने का फन दिया, उन्होंने उससे बचाव का सामान बनाया क्योंकि अंदर तकवा था। आज इंसान उसी लोहे को गर्म करके वेपन्स बनाती है जिससे लोगों के सीनों में गोलियां चलती हैं। जब तकवा के बगैर हथियार बनते हैं तो बेगुनाह शहरियों पे पड़ते हैं, और जब तकवा के साथ हथियार बनते हैं तो सिर्फ उनसे आप अपना बचाव करते हैं जो आपको मारने के इरादे से आगे। आज इंसानियत दुनिया में जो रिसोर्सिस देखती है और उसका मिसयूज देखती है, उसकी वजह यह कि उन लोगों के हाथ में जिनके अंदर तकवा नहीं है। और यकीन कीजिए, बेस्ट मुस्लिम कौन है? उस दिन हमारी एक मीटिंग थी, मैंने उसमें भी ये जुमला बोला और मेरा दिल इस पे इतना जमा हुआ है। मैं कहती हूँ कि हमारे स्कूल का ऑर्गेनाइजेशनल प्लान कितना स्ट्रांग हो कि जो टीम है ना, जो हमारे साथी हैं, उनके अंदर तकवा हो, ईमान अंदर, अंदर से वो कट्टर मुसलमान हो, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, नमाज पे, रोजे पे, अपने दीन के रिचुअल्स को नहीं छोड़ना। अंदर उनके इस्लाम है और उनके बाहर गैर इस्लाम हो, कौन सा? जिस प्रोफेशनल तरीके से ये लोग काम करते हैं, वेस्टर्न तरीकों को अपनाएं काम करने में, कमिटमेंट में, उनके सफाई के सिस्टम को अपनाएं। जब ऐसा गिरो तैयार हो कि अल्लाह से डरते हुए एक बल्ब भी रात को खुला छोड़ दिया, अगले दिन आके उसके पैसे स्कूल में डाल दें कि ये हमारी गलती से स्कूल को नुकसान हुआ है, इतनी जवाबदेही का एहसास हो, तन्हाई में, अकेले में अल्लाह से डरें, लेकिन काम जब करें तो वो प्रोफेशनल हो। कह लीजिए कि दीन का काम प्रोफेशन तो नहीं बनाना, लेकिन प्रोफेशनली करना है। मिशनरी जील से काम करने वाला एक गिरोह तैयार हो जाए, फिर आप जिए या मरे, जहां मर्जी जाए अल्लाह उनसे काम ले लेगा। आज हम मुसलमानों ने उन लोगों के हाथ में प्रोफेशनलिज्म किया हुआ जिनके अंदर ईमान नहीं है, और ईमान वाले बेचारे अलग बैठे हैं। क्या आपको मुझे एक आइडियल कॉम्बिनेशन नहीं लाया दाऊद और सुलेमान की सूरत में दिखाता? दीन की दौलत भी है, दुनिया की भी दौलत है, महल भी है, पहाड़ भी है, सब कर रहे हैं और साथ साथ इबादत भी कर रहे हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत सुनिए, अल्लाह को सबसे पसंद थी, रात का कुछ हिस्सा सोते, फिर इबादत करते, फिर सोते, फिर इबादत करते, फिर सोते, गफलत की रात नहीं थी। आपने फरमाया अल्लाह को सबसे प्यारा रोजा दाऊद का रोजा लगता है, एक दिन रोजा रखते, एक दिन इफ्तार करते। आज ये तसव्वुर है, जरा आप एक ख्वाब तो देखिए कि इमाम साहब मस्जिद में आए, जल्दी से नमाज पढ़ाई, लोग बाद में बात करते हैं, अच्छा ओके नहीं, आई हैव टू गो बिकॉज मुझे एटम पर रिसर्च करनी है, आई एम गोइंग टू माई लेबॉरटरी। तसव्वुर भी आता है, क्या खूबसूरत वो दौर होगा जब ऐसे इमाम मस्जिदों में आएंगे जो नमाजों के बाद जाके लैब्स में बैठ के काम कर रहे होंगे, जो हुबल पे काम कर रहे होंगे, और जो दुनिया को एटम की रिसर्च करके दिखाएंगे। जब तक ये दो चीजों को एक जगह नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगा। और आज लोग कहते हैं अल्लाह काफिरों को तबाह कर दे, अल्लाह बर्बाद कर दे, बिजली गिरा दे इनके मुल्कों पर। इमेजिन तो कीजिए, आज जितना सैटेलाइट सिस्टम है और जो दुनिया को इन्वेंशन मिली, अगर बिजलियां पड़े और ये सब तबाह हो जाए, कोई एक मुसलमान है जो उनकी जगह उनकी जॉब्स पे जाके खड़ा हो जाए? इस काबिल हैं आज हम मुसलमान के दुनिया का निजाम चला सके? हम तो अपने मुल्क नहीं चला सके, दुनिया का निजाम कहां लेंगे? कभी आप इन लोगों को काम तो करते देखा करें। मुझे लगता है कि इस मुल्क में तो मट्टी होती नहीं होगी, इनके तो कुर्सियां टूटती नहीं होंगी, वजह क्या? काम करते हैं, काम करते हैं। हमने पीछे किया हुआ अपने आप, ये काम हमने करने थे तकवा के साथ, या इनको इस्लाम दिला दे। और यकीन करें, मैं बात बहुत बड़ी कहने लगी हूं लेकिन बात सच है, इस्लाम उस दिन खूबसूरत होगा जब वेस्ट के ये लोग जो प्रोफेशनली दुनिया में काम करें ना, वो मुसलमान होंगे। अब यह दिन तो करें, जो काम ये करते हैं कैसा अच्छा करते हैं, जिस दिन ये मुसलमान होकर इस्लाम फैलाएंगे फिर कैसा फैलाएंगे। और इसकी झलकियां आपको न्यू मुस्लिम रिवॉर्ड्स की कोशिशों में दिख रही हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोफेशनलिज्म सीखा हुआ है। मुसलमान हुए तो प्रोफेशनली मुसलमान हो गए। हमने चूंकि शुरू से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अपने बेचारे कॉम्प्लेक्स कंट्रीज में जिनको एहसास कमतरी पड़ा है उसमें अंग खोली, कोई काम चूंकि पूरा नहीं करते तो वो भी नहीं करते, कोई करने लगे कहते छोड़ो क्या जरूरत है, मस्जिद है, इस फाइन, चलने दो, चलती है कुर्सी, जो भी ले आओ, जिस रंग की ले आओ, टूटी भी ले आओ, नीचे ईंट रख देंगे। हमारा हाल आज इस्लाम को फैलाना है, खूबसूरत बनाए। यकीन करें, आप इतने अच्छे माहौल में यहाँ बैठते हैं, हम इसका अल्लाह का लाख लाख शुक्र कर सकते हैं, हक नहीं अदा कर सकते इस जगह का, फिर भी हर दिन मैं एक एक चीज पे सोचती हूँ कि इंशाल्लाह इससे भी अच्छी होती तो अच्छा होता, इससे भी अच्छी होगी तो अच्छा और होगा, कि आपको कंफर्ट मिले, आपको सुकून मिले, आप और अच्छा सोचे। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपनी क्वालिटी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करेंगे, हम लोगों को इस्लाम की खूबसूरती दिखा नहीं सकते। पंप एंड जो इस्लाम नहीं चाहता, ये नहीं कहता कि इतने नरम गद्दे बिछा दो के सारे सो जाए, इतनी सर्दी कर दो कि सब ऊंघने लग जाए, लेकिन कम से कम इस्लाम को उसका ड्यू हक तो दें, और इसकी जरूरत है। इसको शुरू से अपनी नमाज से शुरू कर लें। मुझे अपनी नमाज आसन दर्जे की करनी है, आज मैं अपनी जाती नमाज अच्छी नहीं पढ़ रही, मैं कल नमाज की जगह कैसे अच्छी बनाऊंगी? आज मेरा घर अच्छा नहीं इस्लाम के नाम पे, कल दीन का इदारा मैं कैसे अच्छा चलाऊंगी? आज मेरा घर उलझा पुलझा खराब बिगड़ा टिगड़ा, तो कल मैं दीन के नाम पे इदारे को कैसा टेढ़ा मेढ़ा रखूंगी? तो जब तक ये चीज हमारे दिल में नहीं आएगी, इस्लाम नहीं बन पाएगा। तो आप देखिए, पढ़े लिखे लोग इस्लाम को पकड़ेंगे, लोगों को इस्लाम पढ़ा लिखा लगेगा। मॉडर्न लोग इस्लाम को पकड़ेंगे ना, इस्लाम पढ़ लगेगा। खूबसूरत लोग इस्लाम को पकड़ेंगे, खूबसूरत लगेगा। ये फितरी बात है, जिसके हाथ में चीज होती है वैसी सजती है। एक ही कपड़ा एक पहनता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, दूसरे को नहीं जचता। हमें जरूरत है इस वक्त इस्लाम को, खूबसूरत लोगों की। क्या सबको खूबसूरत चाहिए? इस्लाम को नहीं चाहिए। अब खूबसूरती से मेरा फीचर्स की खूबसूरती नहीं है, डिसेंट मुहज्जब बात करने वाले, तरीके वाले, सलीके वाले, ऐसे लोग जो दूसरों को देखे कि माशाल्लाह कम वेलकम दिस दैट, वो ऐसे वेलकमिंग हो कि लोग उनको देख के सीने से लगते हैं कि इतने अच्छे लोग हैं। माथे पे तेवरियां पड़ी, बिखरे हुए, घबराए हुए, पैनिक क्रिएट किए हुए लोग क्या इस्लाम का नजरिया देंगे? इसलिए आज मुझे और आपको नियत करनी है कि अल्लाह मेरे जरिए इस्लाम को इज्जत दे, अपनी जिंदगी की हर खूबसूरत चीज इस्लाम के रास्ते में लगे। और ये सदका है उस बात का कि अल्लाह आज के दौर में मैं इस्लाम को इज्जत देने के लिए ये करती हूं कि लोगों को पता चले इस्लाम मंगता नहीं है, इस्लाम भूखा नंगा नहीं है, इस्लाम बेढंगा भी नहीं है, गरीब भी नहीं है। इस्लाम गरीब तो है ही कोई नहीं, क्योंकि उसका रब बहुत बड़ा। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज। तो जब ये सारी स्किल्स हम जमा कर लेंगे, इंशाल्लाह फिर देखिए दुनिया में चेंज आएगी। और ये चेंज देखिएगा वेस्ट से आएगी, ये तो मान लीजिए। आखिरत में कहते हैं जैसे सूरज मशरक की बजाय मगरिब से निकलेगा ना, इस्लाम का सूरज भी मगरिब से निकलेगा। और ये आप और मैंने कोशिशें करनी है। आज मैंने और आपने ऐसी नस्लें पैदा करनी है कि यहां से अबू बकर उठेंगे इंशाल्लाह, जो इस्लाम के सपोर्टर बनेंगे। यहां से उमर फारूक निकलेंगे कि जिनके मुसलमान पे पूरे ग्लोब पे लर्जा तारी हो जाएगा। फिर लोग यहां आएंगे इस उमर को मिलने कि इस मुल्क में उमर रहता है, हम देख के आए। और वल्लाह ही ये होगा, मैं करूं ना करूं, आप करें ना करें। हो अल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीन अल हक लियुज़हिरहु अल दीनी कुल्ली। या फिर हम अपने मुल्कों को ठीक कर लें। मैं इसमें अपने मुल्कों की या उन मुल्कों की को बुराई नहीं कर रही, लेकिन मैं हालात पे क्यास करते हुए कहती हूं, जब तक हम अपनी सड़कें ठीक नहीं कर रहे, हम अपने गट ठीक नहीं कर रहे, हम अपने इदारों को रिश्वत से पाक नहीं कर रहे, किस इस्लाम को आप वहां लेकर आएंगे? पहले आप खुद को कूल काम कीजिए। और इसके लिए मुझे और आपको अगर ये ऑनर मिल रही है कि अल्लाह गैर मुल्कों में, गैर इस जगह के जहां कुफर के झंडे लगे, हमारी इतनी पुरअमन, इतनी पुरइत्मीनान कोशिशों से उन गरीबों को भी तो इस्लाम मिल जाए जो जहन्नुम में जा रहे हैं और उनको पता नहीं शराब की बोतल मुंह में लेके मरते हैं। मुझे तो दर्द उनका ज्यादा है। उम्मत तो बिगड़ी है, सो बिगड़ी है, हमारे बिगड़ने का एक नुकसान हुआ कि लोगों ने इस्लाम से नफरत शुरू कर दी। वल्लाही आपको पता, तारीख को खोल के तो देखिए, जहां से मुसलमान गुजरते थे लोग मुसलमान हो जाते थे, उनके किरदार को देख के। आप बरेसगीर पाक को इनकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम के नाम का बुत बना के हिंदुओं ने अपने मंदिर में रखा हुआ था। ये राजा दाहिर के जुल्म सितम के थके हुए लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम को वोट दिए थे, सिर्फ मुसलमानों के वोट से वो नहीं जीता था, हिंदुओं ने भी दिए। क्यों? कहते थे हमें ये पता है कि तू है अच्छा आदमी और इतनी खूबियों से कि इंसान नहीं हो सकता, ये भगवान है, उसको पूछने लग गए। लेकिन अल्लाह ने, आप देखिए कि उसकी किरदार में थी ना बात, इंसाफ कायम किया, अदल कायम किया। हजरत उमर को कितने लोगों ने क्रेडिट दिया, आप जाके हजरत उमर पे बुक्स तो पढ़िए। कहते थे क्या उमर तो इसलिए इत्मीनान से सो रहा है, आधा जिस्म धूप में आधा छांव में उमर सो रहे हैं मस्जिद नबी पे फ्लोर पे। और एक दूर से शख्स आया कि किधर है, जरा मैं देखूं उमर को मिलूं। चलते चलते इधर उधर आए मस्जिद नबी में, देखे एक शख्स गहरी नींद सो रहा है। किसी से पूछा ये कौन है? कहा लगता है तुम इस शहर में आए हो, तुम्हें नहीं पता ये हमारे अमीरुल मोमिनीन है, आज के धर्म के ये हमारे प्रेसिडेंट साहब है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब है। कहा ये उमर है? फिर कहने लगा ये वो उमर है कि जिसने कैसरो किसरा की नींदें उड़ाई हुई है रातों की। दूर बैठे वो उस वक्त के सुपर पावर्स के सर बड़े उससे खौफ खा रहे हैं, वो सो नहीं पा रहे और उमर तो इतनी गहरी नींद सो रहा है। फिर कहा उमर तो इसलिए सो रहा है कि तूने अमन कायम किया, तूने अदल कायम किया, और वो इसलिए बेचैन है कि उन्होंने दुनिया में जुल्म और बर्बरियत की। तो सोचने की बात है। और आज जो आपको मुझे ये गैर मुस्लिम मुल्कों में जो अमन सुकून मिलता है ना, उसकी वजह उनका कुफर नहीं है, ये भी समझ लीजिए बड़ी गहरी बात है। हम सोचते हैं चूंकि ये मुल्क काफिर मुल्क है इसलिए ये बड़े साफ है, चूंकि ये नॉन मुस्लिम मुल्क हैं तो ये बड़े तरक्की कर रहे हैं और ये इन टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, और चूंकि ये कपड़े कम पहनते हैं तो ज्यादा ही इनको काम करने का मौका मिलता है, ये वजह नहीं है। इन मुल्कों में अमन चैन जिधर भी है, मैं इसे एक मुल्क की नहीं बात कर रही, माशाल्लाह अच्छी बात है तो करनी चाहिए, जिस मुल्क में भी आपको दुनिया में अमन चैन दिख रहा है उसकी वजह क्या है कि वहां अदल है, वर्क की हेल्प है और आपकी प्रेस्टीज है। गरीब अमीर का वो फर्क नहीं, आप वॉलमार्ट पे जाएं कहीं अमीरों का खाना है ये गरीबों का खाना है, आप देखिए आपकी मेड यहां से आपसे काम करके जो स्टोर से दूध का डब्बा लेती वही आप ही लेते हैं, जो फ्रूट का पैक वो पकड़ेगी वही आप पकड़ेंगे, सिर्फ चॉइस है आपको लेना क्या। आपको इतना डिग्रेडेड फूड नहीं दिखेगा, हमारे मुल्क वाला हाल नहीं दिखेगा कि ये बड़े लोगों के स्टोर्स हैं ये छोटों के, और ये फटा हुआ खट्टा हुआ फ्रूट इसको दे दो और ये अच्छा वाला उनको दे दो, ये जुल्म है हमारे पास। तो इमाम इब्ने तैमिया का गालिबन कौल है, कहते हैं कोई हुकूमत कुफर पे कायम रह सकती है, जैसे दुनिया में बहुत सारी कुफर पे हुकूमतें चल रही हैं, लेकिन जुल्म पे नहीं कायम रह सकती। जिस दुनिया के खित्ते से जुल्म और बर्बरियत को आप खत्म नहीं करेंगे वहां इस्लाम नहीं आएगा। आप सारी मस्जिदों में कुरान शुरू कर दें कर दें, तो लिहाजा आइडियल वक्त है, आइडियल माहौल है उन मुल्कों में दीन को फैलाना जहां हकीकत में दुनियावी सुकून है। लोग कहते हैं ये मुस्कुराते बहुत है, मैंने ऐसे किसी से कहा कि इन मुल्कों में आए तो सब स्माइल देते हैं, तो मुझे किसी ने ताना ही दिया कहने को, कहती पेट जो भरे हुए तो मुस्कुराएंगे तो और क्या करेंगे, हमारी मुस्कुराहटे तो हमारी गुर्बत ने ली हुई है। बात सच है, क्या आप अपनी जगह पे बैठे हैं, आपको होता है आपको 10 15 20 डॉलर घंटे के मिलने, आप हर क्लाइंट को स्माइल देंगे, स्माइल हाउ आर यू डूइंग, नाइस थैंक, प्लीज टेक योर सीट, मजा आएगा। तो जो जले कुटे बैठे हैं जिनको पता है घर जाके भी मार पड़ने को, जल्दी करो नेक्स्ट, चलो चलो भागो, लेफ्ट ही नहीं कुछ रहता आपको अपने मुल्कों में चले जाए। शुरू में हमेशा नो कहते हैं, ये तो मैंने कई जगह जाके देखा, शुरू में आप डिस्करेज करेंगे चलो जाओ, फिर जरा आप थोड़ा एक दो दफा जाके धक्के खा के एक दिन गुस्से में वहां बोलेंगे ना अच्छा अच्छा बैठो बुलाओ अपने मैनेजर को, फिर वो आपको अंदर ऑफिस में ले जाएंगे, भाई माफ करें बिजली बहुत है गर्मी है इनकी, आप बताएं मैं आपका मसला हल करता हूँ। ये हालात जब होंगे तो इंसान नहीं होगा, इस्लाम नहीं आएगा। तो दुआ कीजिए कि हम कुछ करते हैं, बातें तो हमने बहुत सारी कर ली लेकिन अल्लाह हमसे अमल करा ले, और मुझे यकीन है ये बातें रायका नहीं जाएंगी। ये वो दर्द है कि जिसको मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में फैला दें, और इसमें सिर्फ सिर्फ अमन का मैसेज है। आप इस पूरे प्रोग्राम को सुन लें, आपको कहीं बर्बरियत जुल्म और तशद्दुद की बात नहीं मिलेगी, हर जगह आपको यही सिखाया जा रहा है कि आप कलम उठाएं, लोगों को दीन दें इस्लाम दें और खुद अमल करें। जितना हम करते जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे। अब एक और नबी की कहानी, बहुत कम जिक्र है इनका लेकिन इनकी कहानी है बड़ी खूबसूरत। अभी हमने दाऊद और सुलेमान की कहानी सुनी, शुक्र वाली नेमतों से भरपूर दीन और दुनिया के बेस्ट रोल मॉडल दाऊद और सुलेमान थे। तो अब अल्लाह ताला सबर की कहानी सुनाते हैं अय्यूब की सूरत में, आइए देखते हैं। वही अय्यूब इज़ादा रब्बहु अन्नी मस्सनी यदुर्रु वा अंता अरहमुर राहिमीन। पहले तो नोट कर लें कि जो भी तकलीफ में किसी बीमारी में सिस्टर्स हैं ब्रदर जो भी, तो ये दुआ कुरान की सिखाई हुई दुआ बीमारियों का अक्सर नुस्खा है। आज इतनी तकलीफें और बीमारियां लोगों में आती हैं लेकिन बहुत कम लोगों को इन चीजों का पता होता है कि ये दुआएं, तो ये दुआ नोट करेंगे हम। और यही खुशमंदी और हिक्म और इल्म की नेमत हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम को दी थी, याद करो जबकि उसने रब को पुकारा कि मुझे बीमारी लग गई और तू अरहमुर राहिमीन है। मेरे दिल में अल्लाह ने डाला कि हम सब इस वक्त इस दुआ को एक दुआ के तौर पे पढ़ते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह में से भी जिसको जो भी इस वक्त बीमारी है अल्लाह ताला दूर कर दे, और जिसको जहां भी दुआ है तो आइए मिलके पढ़ लेते हैं। अन्नी मस्सनियत दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अब आप देख रहे हैं कि इस आयत में शुरू में चूंकि रब्बा हु है ना, तो फिर इस दुआ को हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, अन्नी मदनी दुर्वान अरहमुर राहिमीन, ए अल्लाह मुझे तकलीफ लगी तू रहम करने वाला है तू मुझे सेहत दे दे। इंशाल्लाह अल्लाह का जवाब यही होगा जो यहां है, फस्तजबना लहू, बस हमने इसकी दुआ कबूल की और जो तकलीफ इसको थी इसको दूर कर दिया। अल्लाह हमारी तकलीफें भी दूर कर दे। सब सुनने वाले जहां भी सुन रहे हैं और बाद में भी सुनेंगे, या अल्लाह तू उनको बीमारियों से पाक कर दे, या अल्लाह हमें डॉक्टरों के पास ना ले जाना, और अल्लाह तू हमें अपने रास्तों में ही रखाए रख और हमें हर तरह की बीमारी जिस्मानी रूहानी कल्बी जहनी उससे निजात दे दे, और उनकी तकलीफ को दूर कर दिया जो उनको लगी हुई थी, और सिर्फ उसके अहलो याल ही इसको नहीं दिए बल्कि इनके साथ इतने ही और भी दे दिए अपनी खास रहमत के तौर पर, और इसलिए कि एक सबक हो इबादत गुजारों के लिए। क्या सबक है हजरत अय्यूब की जिंदगी में। रिवायत में आता है कि अल्लाह ने इनको दीन दुनिया की हर दौलत दी हुई थी, दौलत भी बहुत थी, माल भी था, औलाद बेटे थे, तो अल्लाह ताला ने अय्यूब की तारीफ की, अय्यूब बड़े सबर वाला शुक्र वाला, कहा अय्यूब सबर शुक्र क्यों नहीं करेगा सब कुछ है, कहा नहीं इसके पास ना भी होगा तो ये शुक्र करेगा, बस आजमाइश आ गई। एक एक करके काम खत्म, कारोबार खत्म, आग लग गई, सारा माल चला गया। जब अय्यूब को अपने पास किसी भी नुकसान की खबर मिली, कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हत्ता कि जब सब कुछ चला गया दुनियावी असबाब, तो कहा अल्लाह मुझे तो अब ज्यादा मजा आता है तेरे से बात करके। पहले भी तू गवाह है कि मेरा नरम गरम बिछोना तैयार रहता था और मैं तेरे से मुलाकात के लिए रातों को खड़ा होता था। अब जबकि तूने ये सब ले लिया, मैं ज्यादा खुश हूं। और मुझे इसी रमजान में एक दुआ जो आपको करवाई थी किसी इफ्तारी के प्रोग्राम में, वो याद आ रही है कि अल्लाह मा जवई तानी, ए अल्लाह जो तूने मुझसे ले लिया, माल ले लिया, औलाद ले ली, बेटा चला गया, बेटी चली गई, अल्लाह जो मेरी दौलत तूने ली है ना, उसको मेरे अपने कुर्बत का जरिया बना दे, मुझे फारिग कर दिया तूने। कल तक मैं उसके कामों में रहती थी, अब मैं फारिग हूं, ए मेरे मालिक अब इस वक्त को अपना बना दे। बड़ी प्यारी दुआ रिकॉर्डेड है, अगर आप भेज दें इनको उसका लिंक तो सुन सकते हैं कि जो नेमतें दी हैं उसको मेरा अपना कुर्ब बना, मैं अपनी नेमतों को तेरे रस्तों में लगाऊं, और जो छीन लिए उसको मेरी फरागत का जरिया बना। तो अय्यूब के साथ ऐसा ही हुआ और अल्लाह का कुर्ब बढ़ा। देखिए दुनियावी चीजें सब चली जानी है, कुछ हमेशा नहीं रहेगा। जो नेमत जाए उसकी जगह रिप्लेसमेंट कीजिए अल्लाह की इस किताब को। और कई ऐसे लोग गवाहियां देते हैं कि जिंदगी में इतने बड़े बड़े सदमे टूटे, अगर इस किताब से ना जुड़े होते तो हम टूट के बिखर चुके होते। और कई किरचियों को इस किताब ने जोड़कर एक क्रिस्टल बना दिया, कई मिसालें मेरी आंखों के सामने इस वक्त में। मत अपने पर रहम करें, अल्लाह के फैसलों को कबूल करें, खुश हों। अल्लाह ने छोटी तकलीफ से टाल दिया, इससे भी बड़ी आ सकती थी। हम किसी के जाने पर रोते हैं, क्या वो हमारे सामने हैंडीकैप होके बोल ना सके, खा ना सके, सुन ना सके, जिस समय कीड़े पड़े हैं हम बर्दाश्त करेंगे? हमेशा बी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक बनिए, कोई बात नहीं। हजरत अय्यूब इतने ज्यादा ऐसे थे, हर सदमे पर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह का, देखा मेरा अय्यूब कितना सब्र वाला, का क्या बड़ी बात है। फिर एक बच्चे मरने शुरू हो गए, एक एक करके सब बच्चे फौत हो गए, का अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहने वाले ने कहा लो जी क्या है, और बच्चे पैदा कर लेगा, सेहत है। तो फिर आगे हम पढ़ेंगे कि शैतान ने हाथ फेरा और इनको स्किन डिजीज हो गई। 18 साल तक का नाम आता है रिवायात में, जिस्म पे कीड़े पड़ गए। हत्ता के लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी, पता नहीं क्या जुर्म किया जिसकी सजा भुगत रहा। ये लोग भी तो बहुत बड़े मुफ्ती होते हैं ना, फतवे देने में तैयार। अपने पे कोई तकलीफ है कहते हैं अल्लाह मेरी इस हाल जानता है, वो मेरे दर्जे बुलंद कर रहा, नेक तो मैं पहले ही बड़ी थी, अब अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ी जन्नत देनी ना, ये मेरी आजमाइश है। और जरा ससुराली रिश्तेदार या किसी दूसरे को देखे जो अच्छा नहीं लगता, कहते पकड़ में आ गई अल्लाह की, अल्लाह ने थोड़ा पकड़े और पकड़े, कभी ना फतवे दें। बहरहाल आजमाइश बड़ी तवील थी। जब लोगों ने ये ताना दिया ना कि अय्यूब का अल्लाह है नहीं है, ये क्या वजह है, फिर पुकारा नी मसनी दुरुआंतर हम रहमी, और अल्लाह ताला ने फिर ऐसी सेहत दी। हाँ तो इतना ही जिक्र है ना, अगले एक सूरत में हम एक जगह पढ़ेंगे कि अल्लाह ने इनको फिर सेहत दोबारा दी, जिस्म दोबारा दिया, जवानी दी। बीवी वापस आई, इनको देखा तो ये जवान हो चुके थे, सिर्फ बीवी इनका साथ दे रही थी, बाकी सब छोड़ गए, कूड़े के ढेर पे लोग इनको फेंक आते थे। तो बीवी इनकी टेक केयर करती, काम करती, इनकी खिदमत करती। और जब एक दिन अल्लाह ने इनको ये सेहत दी, वापस आई तो देखा तो कम घर में एक जवान मर्द है, तो फौरन छुपने लगी। फिर उन्होंने आवाज दी, कहा नहीं मैं अय्यूब हूं, तू तुझे क्या हुआ, कहा अल्लाह ने सेहत दे दी। फिर अल्लाह कहते उतने ही और बेटे भी दिए, रिवायत में आता कि इन पर सोने की टिड़ियां बरसी थी, दुनिया में इन पर सोने की टिड़ियां बरसी थी, और अय्यूब उसको दोनों हाथों से ले रहे थे। कहा अय्यूब क्या हो गया, सबर वाला, तू तो सबर वाला है, कहा ये तेरी रहमत है, इसको मैं दोनों हाथों से समेटूंगा। और वल्लाही अल्लाह थोड़ा सा दुख देकर जो खुशियां आपको देता है, फिर आपका दामन छोटा पड़ जाता है और आप उसको समेट नहीं पाते। इतनी दौलत सिर्फ अल्लाह के वो फैसले कबूल कर लीजिए जो आपको समझ नहीं आ रहे। रदी तो बिल्लाह रब्बन, जान का, माल का, औलाद का, घर का, शौहर का, ससुराल का, कोई सदमा टूटे कही अल्लाह मैं तेरे से खुश हूं। मत लोगों के सामने मजलूमियत की तस्वीर बने, फिर देखिए अल्लाह इतनी रहमत करेगा आपके ऊपर कि आप उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। सब वापस दे दिया अल्लाह ने। आज अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को यही किरदार दिखा रहा है, मत डाउन जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा भी तुम जिंदा हो, सारी दुनिया भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। एक दफा उठो, बुलंद हो, जरूरत पैदा करो। आज सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के मुसलमान सिर्फ खुद जुड़ जाए ना, और अपने रिसोर्सेज को एक जगह जमा कर दें, पूरी दुनिया के जो गैर मुस्लिमों के रिसोर्सेज हैं उससे कई गुना बड़े रिसोर्सेज हैं हमारे पास। मुस्लिम लोग जुड़े, मुस्लिम मुल्क जुड़े, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जुड़े, और इत्तेहाद छोटी चीज से शुरू होगा। हम कहते हैं हम जरा वो ईरान और इराक जुड़ जाएंगे ना, फिर हम भी जुड़ेंगे। नहीं, देखिए आप कभी सोचें कि जिप होती है ना टूटी हुई, अलग है, जिप को जब अपने बंद करना होता है तो कहां से जोड़ते हैं, नीचे से जोड़ते हैं, फिर पकड़ के यूं जोड़ते हैं। आपको मुझे जुड़ना पड़ेगा, इस कमरे में बैठों को जुड़ना पड़ेगा, इस स्कूल में आने वाले 2 वॉलंटियर्स को जुड़ना पड़ेगा, दीन का काम करने वालों के अंदर इत्तेहाद आएगा, फिर इस इदारे में आएगा, फिर दूसरे में आएगा, फिर एक मस्जिद दूसरी से जुड़ेगी, जहां आप छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से ताबुन ना करें। सो सैड, यानी तकलीफ से दिल भर जाता है कि हम हर एक काम करने को तैयार है, हम एक दीन वाले का नाम सुनते ही दूसरा वाले कहते हैं, हम उनको नहीं जानते, हम उनके साथ नहीं जुड़ सकते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। वॉक इन कोई भी आपके पास आ सकता है, किसी इदारे का नाम ले ले, कहते नहीं हाँ सॉरी वी डू वॉन्ट टू डू दिस। ये तकब्बुर और किबर जब तक दिल से नहीं जाएगा, उम्मत नहीं जुड़ेगी, फिर मस्जिदें जुड़ेंगी, इदारे जुड़ेंगे, फिर हुकूमतें जुड़ेंगी, फिर मुल्क भी जुड़ जाएंगे, फिर सारी जिप बंद हो जाती है और एक ऐसी शील्ड आपके सामने आ जाएगी, कोई आपका बाल भी का नहीं करेगा। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें खैर को आम करने वाला बना दे। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने ये बात करके हम सबको बता दिया कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है। जो खो गया उसका गम ना करो, जो मिला नहीं उसको छोड़ो, जो मिलने वाला है उसको पाने की तलब करो, और करो क्या, आबिद बन जाओ, अल्लाह के आगे अपने आप को झुका दो। और अब आगे व इस्माइल व इदरीस व जिल किफल, और यही नेमत इस्माइल और इदरीस और जिल किफल को दी, ये सब साबिर लोग थे और इनको हमने अपनी रहमत में दाखिल किया और वो सालेहों में से थे, और मछली वाले को भी हमने नवाजा। ऐसे रखते अल्लाह को हजरत यूनुस से बहुत ही प्यार है। देखिए नाम है ना यूनुस, इनको कुरान में 3 मुख्तलिफ अंदाजों से पेश किया गया। यहाँ के वजन नून, नून कहते हैं मछली को, समक भी मछली को कहते हैं, हूत भी मछली को कहते हैं। सूरत कलम में इनको साहिबिल हूत कहा जाएगा, मछली वाले। हाँ यहाँ जन नून है, नाम इनका यूनुस है, प्यार की बातें, यानी वो जो मछली के पेट में चला गया था, तो मोहब्बत का अंदाज है। क्या है, आइए पढ़ते हैं। वजन नून इज़हब मुगादिबा, और मछली वाले को भी हमने नवाजा, याद करो जबकि वो बिगड़ कर चला गया, और समझा था कि हम इस पर गिरफ्त ना करेंगे, आखिर को इसने तारीकियों में पुकारा। किसकी तारीकियां, मछली के पेट की तारीकी, पानी की तारीकी, समंदर की तहों की तारीकी, और क्या पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। जरा इसके तर्जमे पे गौर कीजिएगा, नहीं है कोई जात मगर तू, पाक है तेरी जात, बेशक मैंने ही कसूर किया। जो ही ये पुकारा, फस्तजबना लहू व नजैनाहु मिनल गम, तब हमने इसकी दुआ कबूल की और गम से इसको निजात बख्शी। और इसी तरह हम मोमिनों को बचा लिया करते हैं। यह है वो खूबसूरत कलमा जिसको आज हम आयते करीमा के नाम से जानते हैं। इतना खूबसूरत कलमा है कि अल्लाह ने ना सिर्फ इसकी वजह से हजरत यूनुस को बचाया, बल्कि अल्लाह कहते हैं आज भी जो अपने दुखों और गमों में इसको पढ़ेगा, अपनी मुश्किलात पे पढ़ेगा, मैं इसको भी बचाऊंगा। पर पढ़ना कैसे है, ये सोचने की बात है। आज लोगों ने इसको 1.25 लाख कर दिया, 1,25,000, लिख के देखिए फिगर। पूरे कुरान की आयतें तकरीबन 6,000 कुछ हैं, कितने कुरान के बराबर ये वजीफा बनता है। आपसे मैं कहूं कि आप एक पूरा कुरान पढ़ें, जरा मुश्किल लगेगा। 6,000 को जरा कोई अभी से करके बताए, 1,25,000 को डिवाइड कीजिए जरा 6,600 से, ऐसी रफली कितने कुरानों के बराबर एक वजीफा रखा। क्या खुशी रहा, क्या हुदू रहा, किसने आपसे कहा 1.25 लाख की यूनुस ने पढ़ा, कौन सी गुठलियां थी जो मछली के पेट में रखी गई थी, कितने गिना, और यूनुस को इतनी लंबी गिनती किसने सिखाई। तो याद रखिए बस इतनी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। खूब पढ़े, ये कलमा बहुत प्यारा। बच्चा घर नहीं आया, पढ़े ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका। शौहर की जॉब नहीं की, पढ़े दिल में, ये आपके दिल पे, लेकिन फीलिंग्स के साथ पढ़े। हाँ हम कहते हैं हाँ वाकई ये काम तो बहुत लंबा है, तो कोई 10-15-20 कुरानों के बराबर बनता, मैं तो नहीं पढ़ती। फिर सहेलियों को बुलाया, हम खाना पकाते हैं, आप पढ़िए, मान लेते हैं, सोचिएगा। सारी दोस्तें आई, वो बैठी कुरान पढ़ने लग गई, आप उनके लिए खाना बना रही, अब खुद भी पढ़ रही हैं। जरा इसके तर्जमे पे गौर कीजिए, इमेजिन कीजिए मैं आपकी दोस्त हूँ और आपने मुझे बुलाया कि ये मेरे लिए पढ़ दें, आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ ये कलमा, तो मैं अल्लाह से क्या कह रही हूँ, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, कोई नहीं है मगर तू पाक है और मैं जालिम हूं। तो आपकी दोस्त को क्या मिला इधर इस पूरे कलमे में, आपकी दोस्त है। या तो इस कलमे को यूं पढ़िए कि ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका, हाँ ये जो है ना ये जालिम है, अल्लाह मैं नाम ले लेती हूँ कोई भी, ये सलमा जो है ना ये बड़ी जालिम है। आप अपनी दोस्तों से इस तरह पढ़ाएं जिसमें आपका नाम आए तो पढ़ाएं। देखिए ये तो आप मानते ही हैं ना कि आपको अपनी मुसीबत टलवानी है, तो इस कलमे में आपका नाम तो आया ही नहीं है। सलमा जालिम है, फरा जालिम है, जो भी नाम जिसका आता है उसका ले लीजिए, कि फिर तो बात बनी। ये तो अपने गुनाहों में डूबा हुआ कलमा है, अल्लाह मुझे अपने गुनाहों का गम है कि मेरे साथ आज तक जो कुछ हुआ या इस वक्त जो हो रहा है ये मेरा ही को गुनाह था जो आगे आ गया। तो हमेशा चीजों को शऊर के साथ पढ़ेंगे तो फायदा होगा, रसमन पढ़ें जो मर्जी करें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और आसान दीन दे। इतनी दफा गिन के अगर अल्लाह के नबी ने कुछ पढ़ा होता तो बदर में पढ़ते, उहद में पढ़ते, खंदक खोदने के बजाय बैठ देते तस्बीहें पकड़ाकर। आप सुनेंगे अगर आ रही सूरत अहज़ाब आगे, कितना बड़ा टारगेट था। यहां से आपको इस्लाम का मिजाज भी समझ लें, जरूरत इस मौजू को आज समझने की, क्योंकि आज हम कहते हैं वजीफों के जरिए काम करवा लो हर बड़े छोटे काम को। पिछले दिन अभी चंद दिन पहले लू चली तो किसी ने वजीफे लिख के व्हाट्सएप पे आम करने शुरू कर दिए। कहीं कुछ भी होता है कहते हैं ये वजीफा इतनी दफा पढ़ो। गज़वे खंदक का मौका आया और अल्लाह के नबी लोगों को कहते हैं कि चलो बैठो वजीफों की तस्बीहां करो देखना क्या होगा। कर सकते थे, पर इस्लाम प्रैक्टिकल दीन है। खुद बजाते खुद अपने साथियों को लेकर इतनी खंदक खोदी जमीन में गहराई में, पेट पे पत्थर बांधे, प्रैक्टिकल दीन है। कोई कहता बैठ के इधर वजीफा कर लो, कोई कहता घर बैठ के जिक्र कर लो, अपनी इसलाह कर लो, तो आप मुझे बताइए कि इस्लाम का दिफा होता? कम से कम दौरे कुरान इकट्ठा सुनने से हमें कुरान का ये मिजाज तो समझ आ जाता है। और वो क्या है कि इस्लाम प्रैक्टिकल दीन है, इसका बुनियादी थीम दावा है, इंतजार है, और ये घर बैठ के नहीं होता। अपनी जाती इसलाह के नाम पे 10-10, 20-20 साल बैठे रहेंगे फिर भी कुछ नहीं होगा, और बाहर गंदगी होगी ना आपके घर के अंदर भी वो गंदा आएगा। तो लिहाजा हमने इन चीजों को रस्म नहीं बनाना, इसकी इल्लत समझने, इसका हुक्म समझ के करेंगे इंशाल्लाह। वकजालिक नुनजिल मोमिनीन। अब इसके बाद एक और नबी जिनको अभी तक अल्लाह तआला ने औलाद की दौलत नहीं दी ना, उनके लिए इसमें एक बहुत बड़ा सबक है। आइए देखते हैं। वज़करिया इज़ नादा रब्बहू, और ज़करिया को जबकि इसने अपने रब को पुकारा, आइए हम भी मांग लेते हैं, रब्बी ला तज़रनी फरदम वअंत खैरुल वारिसीन। क्या पुकारा? ए परवरदिगार मुझे अकेला ना छोड़, और बेहतरीन वारिस तो तू ही है। कभी नबियों के लफ्ज देख रहे हैं? सोने के पानी से लिखने वाले, ये नहीं कहा अल्लाह बेटा दे दे बेटी दे दे, बस कहा अल्लाह तू वारिस है, लेकिन मुझे अकेला ना छोड़ना। औलाद मांगी और अल्लाह ने बुढ़ापे में औलाद दी, बस हमने इसकी दुआ कबूल की। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह जिन बहनों को अभी तक औलाद की दौलत से महरूम रखे उनको वो औलाद दे जो नेकियों के कामों में भागने में मददगार हो, क्योंकि आगे जिक्र आ रहा है। डर पड़ता है किसी को औलाद की दुआ देते हुए कि ये ठुस होके घर ना बैठ जाए। मुझे तब किसी को शादी की दुआ देते हुए डर लगता है जो दीन के कामों में मगन है, मगर शादी का इनका रास्ता ही ना रोक दे। यकीन कीजिए हमें जरा सी नेमत मिलती है ना, वो नेमत एक रुकावट बना के अल्लाह को कहते हैं अब तू कौन, काम निकल गया, थैंक यू सो नाइस, फिर कभी मिलेंगे। नमाजें तक कजा होने लगती हैं शादियों के बाद। तो दुआ मांगी औला, अल्लाह सबको औलाद, आप में इधर 20 वक्त जो औलाद से दूर है अल्लाह उसको सालेहीन में दे, एक नहीं चार चार दे। कल किसी एक सिस्टर से इतनी अच्छी मुलाकात हुई मेरी, आप लोग भी मिले होंगे, एक रिवर्ट सिस्टर थी तो किसी और कल्चर से थी, तो मुझे मिली तो बहुत खुश थी, तो मुझे अच्छा लगा मिली। तो कहने लगी कि बच्चा उसका था उसके साथ, तो मैं उसको प्यार करने लग गई, बड़ा प्यारा सा बच्चा था, यूं गुगलू देख रहा था, तो मैंने इसको पकड़ा। वो बड़ी बेजार थी, कहती आई एम टायर्ड, क्यों? कहती आई हैव 7 किड्स। कहती जब मैं रिवर्ट हुई थी तो मेरे दिल में बहुत सारे ख्याल थे, मैं ये करूंगी उधर सीखने जाऊंगी, बट आई गॉट किड्स किड किड किड। तो मैंने कहा सिस्टर डोंट वरी, यू आर क्रिएटिंग मुस्लिम उम्मा, अल्लाह ने आपको एक मशीन बनाकर अगर मुसलमान बच्चे प्रोड्यूस करा रहा है तो नो प्रॉब्लम। कहते आई एम टायर्ड नाउ, तो मैं उस बच्चे को पकड़ के प्यार करूं, और वो माँ बेचारी थकी हुई थी, मैंने कहा आई विल गिव यू हैंड, जो तुम खाना खाओ, मैं इस बच्चे को पकड़ती हूँ। लेकिन आप देखिए कि जिनको अल्लाह ने औलाद दी है क्या वो बच्चों को लेकर अल्लाह के रास्तों में नहीं भागेंगे? इसका अगला हिस्सा सुन लीजिए, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। बस हमने इनकी दुआ कबूल की और उसे यहया अता किया, जिंदगी वाली औलाद अल्लाह दे, जीने वाली औलाद दे जो हकीकत में फिर खुशियां भी दे, और उसकी बीवी को इसके लिए दुरुस्त कर दिया। आप कहेंगे मीनोपॉज की उम्र में बच्चा कैसे हो गया? अल्लाह कहते बीवी ठीक कर दी, डॉक्टर्स के पास जाए बगैर उसका इलाज हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, बीवी ठीक हो गई, और ये लोग नेकी के कामों में दौड़ धूप करते थे। हाईलाइट कीजिए, जिसके पास औलाद नहीं है वल्लाह ही वो नेकी के कामों में दौड़ धूप शुरू करते, देनी होगी तो अल्लाह दे देगा, लेकिन आपको कम अज कम उसका बेस्ट ऑल्टरनेट जरूर मिल जाएगा। वयदूनना रग़बं व रहबा, और ये हमें रग़बत और खौफ के साथ पुकारते थे। वकानू लना खाशीन, और हमारे आगे झुके हुए थे। ये तीन खूबियां अल्लाह हमें भी दे दे। रोग लेके बैठेंगे, बीमार हो जाएंगे, हर वक्त डॉक्टरों के चक्कर लगाएंगे, आप खुद को मसरूफ कर लें, रग़बतों से रहब से रब को पुकारे, आपको किसी चीज की परवाह नहीं होगी। अभी तक जिनकी आजमाइशें थी वो मरते, अब औरत की बात आ रही है। वल्लती अहसनत फरजा, यानी उस औरत की आजमाइश तो सारे नबियों से फर्क है। आप देख रहे हैं ना, हर नबी का मुख्तलिफ तरीका है ना अल्लाह का आजमाने का, लेकिन अब एक औरत की सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत है, तो अल्लाह ताला उस इज्जत पे उसको आजमाइश पे ला रहे हैं। हजरत मरियम का किस्सा है, और वो खातून जिन्होंने अपनी इज्जत की हिफाजत की, हमने उसके अंदर अपनी रूह से फूंका और उसे और उसके बेटे को दुनिया भर के लिए निशानी बना दिया। किस बात की निशानी? कि इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बिन बाप के अल्लाह बेटा दे सकता है। बाप के साथ बेटा होता है तो वो कैसे होता है? देखिए लोग कहते हैं ना, ईसा कैसे पैदा हो गए बिन बाप के, तो मैं आपसे पूछूं कि ये माँ और बाप के मिलाप से बच्चा कैसे पैदा होता है? क्या अक्ल में आने वाली बात है? कोई एक मरहला भी बच्चे के पैदा होने तक का लाइए अक्ल में आता है? और अगर हमने अपनी आंखों से रात दिन ये चीजें ना देखी हो, तो हम कभी माने कि एक बच्चा माँ के पेट में किन मरलों से गुजरा और बाहर जीता जागता आ गया? दरख्तों पे उगते बाहर होते हम मान जाते, नामुमकिन है ये भी कि एक बच्चा माँ बाप के जरिए भी पैदा हो जाए। तो खाली बाप से पैदा कर दे, खाली माँ से कर दे, ये अल्लाह की शान है, इसलिए इसको अल्लाह ने निशानी बना दिया। अब सबका जिक्र करके अब सूरत का एंड है। अब नबी सल्लम को इतनी खूबसूरत स्टोरी सुनाने के बाद क्या कहा? इन हाजी उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, ये तुम्हारी उम्मत हकीकत में एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूं। कितना अच्छा लगता होगा अल्लाह के नबी को आयतें सुनकर। बस तुम मेरी इबादत करो, मगर ये लोगों की कारिस्तानी है कि उन्होंने आपस में अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया। हाईलाइट कीजिए और रो लें थोड़ा सा। पिछले नबियों की आजमाइशें कहीं आग में डाली गईं, कहीं उनको बच्चों की आजमाइश से डाला गया, कहीं कुछ, और नबी सल्लम को अल्लाह कह रहे हैं आपकी उम्मत की आजमाइश फिरका वारियत से होगी। ये था काम जो अल्लाह के नबी को रुलाता था। और आज उम्मत मुस्लिमा पे जो अजाब और आजमाइश है ना, ये फिरका वारियत की है। छोटे छोटे टुकड़े, आगे आप पढ़ेंगे कुल्लू हिस्बिन बिमा लदैहिम फरिहीन, हर बंदा अपने टुकड़े पे बड़ा खुश है जो उसके हाथ में आया हुआ है। उसी को जुज को कुल बना के पूरा दीन पेश कर दिया। लोगों ने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिए, कोई बात नहीं, कुल्लू इलैहि नाराजिऊन, सबको आखिर हमारी तरफ पलटना है, लग पता जाएगा कौन सच्चा कौन झूठा। फिर जो कोई नेक अमल करेगा इस हाल में कि वो मोमिन भी हो, तो इसके काम की ना कदरी ना होगी, और इसे हम लिख रहे हैं। और मुमकिन नहीं कि जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया हो वो फिर पलट सके। नोट कर ले, मरने के बाद किसी की रूह दुनिया में नहीं आती, ये आयत उसकी दलील है। नेक आ सकता है, उसको जन्नत को छोड़ के आने को दिल करेगा? और जहन्नुम वालों को सिर्फ जीन के घड़ों से कोई निकल कर आने देगा? लोग कहते हैं खाने पकाओ, रूहों को बुलाओ, रूहें नहीं आती। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो चला गया वो चला गया, ये वन वे रोड है, लगा दे कि हमने कुछ करना है।